धवला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, त्रिभुवन शिरसे हरये भवभयगभादुनिगदेपणं, सिद्धे जीवठाण मलिन गुण चूलियम उच्चम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान नामक है, उसका ये चूलिका नामक प्रकरण है और ये छठी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 50 पर हम आगे 50। कल हमने नाम कर्म के जो प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां 42, जो पिंड अपिंड मिलकर, तो उसके नाम हमने देखे थे। अभी उस सूत्र का अर्थ देखेंगे। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, गति यह नाम भव अर्थात संसार का है। यदि गति नाम कर्म न हो तो जीव गति रहित हो जाए। जिस जीव भाव में आयु कर्म से अवस्थान के प्राप्त करने पर शरीर आदि कर्म उदय को प्राप्त होते हैं, वह भाव मिथ्यात्व आदि कारणों के द्वारा कर्म भाव को प्राप्त जिस पुद्गल स्कंध के उदय से उत्पन्न होता है, उस कर्म स्कंध की गति या संज्ञा बहुत बड़ी परिभाषा बताई। यानी यहाँ ये बात हो रही है कि गति नाम कर्म है, उस कर्म स्कंध को गति नाम कर्म कह दिया। अब हमने ये बात देखी थी कि आयु कर्म से अवस्थान प्राप्त करता है, आयु कर्म के कारण विशिष्ट वो आयु उसमें स्थित रहता है, अवस्थान प्राप्त करता है, तो वहाँ शरीर आदि कर्म उदय को प्राप्त होते हैं। वह भाव यानी वो गति भाव की बात चल रही है, गति औदयिक भाव की बात है ना, यानी ये औदयिक भाव में आयु कर्म के अवस्थान होने पर शरीर आदि कर्म का उदय होता है। ये जो गति औदयिक भाव है, वो मिथ्यात्व आदि कारणों के द्वारा कर्म भाव को प्राप्त जिस पुद्गल स्कंद के उदय से उत्पन्न होता है। पृष्ठ 50 चल रही बात अपनी, नीचे के 4 लाइन पढ़े थे, फिर दोबारा पढ़ते उसको। कल हमने ये सभी नाम कर्म के नाम देखे थे, अब यहाँ गति जाति आदि जो नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ हैं उसकी बात चल रही है। तो गति नाम कर्म किसको कहना, तो यहाँ कहते पुद्गल स्कंध को कहना। तो ये पुद्गल स्कंध कैसे हो जाता है, ये पुद्गल स्कंध की क्या बात है, तो उसकी परिभाषा यहाँ बताई है सेकंड लाइन में, जो नीचे से तीसरी लाइन समझो, कि जिस जीव भाव में अन्य अन्य जो कर्म उदय को प्राप्त होते हैं, वह भाव यानी यह गति औदयिक भाव ऐसा भी समझे हम, कि आयु कर्म से अवस्थान के प्राप्त करने पर, कल हमने देखा था आयु कर्म का कार्य क्या है, तो कहीं पर अवस्थान प्राप्त करना। देखो नीचे कल की बात देखें, यानी किसी भव में जीव का अवस्थान होता है। देखो पेज नंबर 48 निकालना, नीचे के दो लाइन। देखो जिन कर्मों के उदय से जीव का, अभी वो स्वभाव वाले छोड़ दो, नारक भव में अवस्थान होता है, उस कर्म स्कंध को नरकायु कहते हैं। और जिन कर्मों कर्म स्कंधों के उदय से, यानी जिस कर्म के उदय से तिर्यंच भव में जीव का अवस्थान होता है, उसको तिर्यगायु कहते हैं। अब अपने पेज पर आना, 50 नंबर के पेज पर। अब यहाँ कहते हैं जिस जीव भाव में आयु कर्म से अवस्थान के प्राप्त करने पर, भले वो नरक भव, मनुष्य भव, तिर्यंच भव, जहाँ जिस भव में उसने अवस्थान प्राप्त किया, वहाँ शरीर आदि कर्म उदय को प्राप्त होते हैं। यानी उस टाइप के, जैसे मनुष्य तिर्यंचों को औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा, देवनारकी को वैक्रिय, यानी अन्य अन्य कर्म उदय को प्राप्त होते हैं उस गति के अनुसार। वह भाव मिथ्यात्वादी कारणों के द्वारा कर्म भाव को प्राप्त जिस पुद्गल स्कंध के उदय से उत्पन्न होता है, यानी अपनी भाषा में गति नाम कर्म के उदय में वो जीव का गति उदय भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वाक्य है, हमने 3-4 बार अभी तक पढ़ा है, उस कर्म स्कंध की गति यह संज्ञा है। अब 51 पृष्ठ पर आते हैं, गति नाम कर्म की बात हुई, अब जाति नाम कर्म, यानी गति नाम कर्म के उदय में जीव के वो गति नामक हुआ उदय भाव भी उत्पन्न होगा, और उसमें उसके अनुकूल सब प्रकृतियों का भी वहाँ वैसे वैसे उदय पाया जाएगा। जाति किसको कहना, तो जीवों के सदृश परिणाम को जाति कहते हैं। यदि जाति नाम कर्म न हो तो, जैसे कौन से कर्म न हो तो क्या होगा, ऐसे पहले गति के बारे में बताया था, जीव गति रहित हो जाए। जाति नाम कर्म न हो तो खटमल खटमलों के साथ, बिच्छू बिच्छुओं के साथ, चीटियां चीटियों के साथ, धान्य धान्य के साथ और शाली शाली के साथ समान न होगी। शाली यानी वो चोखा तंदुल, आप क्या कहते, चोखा चोखा, चावल चावल
चावल के ऊपर का छिलका,
वो उसके साथ शाली होती है, शाली तंदुल ऐसा आता है ना। किंतु इन सब में परस्पर सदृशता दिखाई देती है, इसलिए जिस कर्म स्कंध से जीवों के अत्यंत सदृशता उत्पन्न होती है, वह कर्म स्कंध कारण में कार्य के उपचार से, कार्य क्या है वो सदृशता, उसका कारण क्या है ये जाति नाम कर्म, जाति इस नाम वाला कहता है। अब शंका पूछते हैं, यदि परिणामिक ने वो पारिणामिक यदि पारिणामिक सदृश परिणाम नहीं है तो सदृश परिणाम रूप कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता। इस अन्यथा अनुपपत्ति से क्या कहना चाहते हैं, सदृश कार्य उत्पन्न होना है तो परिणाम भी, पारिणामिक सदृश परिणाम नहीं तो सदृश परिणाम रूप कार्य भी उत्पन्न नहीं होता। तो कहते कारणभूत कर्म का अस्तित्व भले ही सिद्ध होवे, किंतु गंगा नदी की वालुका आदि में पारिणामिक सदृश परिणाम पाया जाता है, इसलिए हेतु के अनैकांतिक होने से सदृश परिणाम अपने कारणीभूत कर्म के अस्तित्व को नहीं सिद्ध करता है। यह क्या कहना चाहते हैं आप, ये जाति नाम कर्म के कारण जीवों की सदृशता भले बताते हैं, परंतु नदी में जो वालु रेत पाई जाती है वो भी एक दूसरे से सदृश है, तो वहाँ कहाँ कर्म का अस्तित्व, ये है ना इनका प्रश्न है। आप ये जो हेतु देते हैं यह अन्यत्र भी पाया जाता है, इसलिए आपका यह हेतु सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। पेज नंबर है 51, नीचे का समाधान अभी पढ़ेंगे। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि गंगा नदी की वालुका के पृथ्वी का एक नाम कर्म के उदय से सदृश परिणामता मानी गई। उसने गंगा नदी के वालों का उदाहरण दिया, तो वो भी पृथ्वी का एक है। परिमाणुओं में नहीं, परमाणुओं में। परमाणुओं में सदृश परिणाम स्वाभाविक पाया जाता है, इसलिए उपर्युक्त हेतु अनेकांतिक है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हेतु संबंधी दोषों में अनेकांतिक नाम के दोष का अभाव है। जैसे लक्षण संबंधी दोष बताते हमने, अतिव्याप्ति अव्याप्ति और वो असंभव, वैसे हेतु संबंधी जो दोष बताया है न्याय शास्त्र में, उसमें ऐसा वाला कोई अनेकांतिक वाला दोष नहीं है। अन्यथा अनुपपत्ति के अभाव से साधन के अविक्षिप्तता प्राप्त होती है, अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि अन्य प्रकार से मानने पर अव्यवस्था उत्पन्न होती है। साधन यानी जो हमें सिद्ध करना है ना, जो साध्य है उसको सिद्ध करने के लिए जो साधन है, तो को यदि अन्यथा अनुपपत्ति का अभाव हो तो वो बात अलग है, परंतु यहाँ अन्यथा अनुपपत्ति न हो यह बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वो पाई जाती है। ऊपर ये बताया था, देखो शंका ने शंकाकार पूछा था कि पारिणामिक सदृश परिणाम नहीं है तो सदृश परिणाम रूप कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, तो उसके लिए ये सारे उत्तर हैं। यहाँ पर अन्यथा अनुपपत्ति न हो यह बात नहीं है, क्योंकि यहाँ वह पाई जाती है। अन्यथा अनुपपत्ति यानी जो सदृशता जीवों में पाई जाती है उसका कारण भी सब में समान है, तो उसको हम जाति नाम कर्म कहते हैं। वो जाति नाम कर्म के उदय से वो सदृशता पाई जाती है उसमें। दूसरी बात यह है कि यदि जीव के द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंधों का सदृश परिणाम पारिणामिक भी हो तो हेतु अनेकांतिक होवे, प्रश्न चिन्ह, यानी जीव के द्वारा किए गए पुद्गल स्कंधों का सदृश परिणाम पारिणाम भी हो तो हेतु अतः अनेकांतिक होवे, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का अनुपलंब है। यदि जीवों का सदृश परिणाम कर्म के अधीन न होवे तो चतुरिंद्रिय जीव घोड़ा हाथी भेड़िया वाघ छब्बल आदि के आकार वाले हो जाएंगे, छबल तथा पंचेंद्रिय जीव भी भ्रमर मत्कुण शलभ इंद्रगोप शुल्लक अक्ष और वृक्ष आदि के आकार वाले हो जाएंगे। मैंने अन्य अन्य चतुरिंद्रिय से एक इंद्रिय तक के नाम बताए, किंतु इस प्रकार है नहीं, क्योंकि इस प्रकार के वे पाए नहीं जाते। तथा प्रतिनियत सदृश परिणामों में अवस्थित वृक्ष आदि पाए जाते हैं, इसलिए जीवों का सदृश परिणाम पारिणामिक नहीं है यह सिद्ध हुआ। ये सदृश परिणाम उनका पारिणामिक है, स्वभाव से ही ऐसा कहते नहीं, उसके कारण नहीं है, वो कर्म के कारण। क्योंकि पारिणामिक होता तो सब में होना चाहिए, तो ये विशिष्ट उस ग्रुप में ही वो सदृशता पाई जाती है, तो ये पारिणामिक नहीं हो सकती, ये कहना है। पेज नंबर 52 दूसरा पैराग्राफ। जिस कर्म के उदय से, यानी एक एक कर्म के ऊपर यहाँ चर्चा चल रही, गति नाम कर्म और जाति नाम कर्म की बात हो गई, अब शरीर नाम कर्म की बात करेंगे। जिस कर्म के उदय से आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंध तथा तेजस और कार्मण वर्गणा के पुद्गल स्कंध शरीर योग्य परिणामों के द्वारा परिणत होते हुए, यानी उनका शरीर रूप परिणमन होता है। ये शरीर रूप परिणाम पुद्गलों का है, तो ये पुद्गल आहार वर्गणा के है, वो शरीर रूप परिणमित होते हैं और उसके लिए किसी कर्म का उदय निमित्त है। तो कहते परिणत होते हुए जीव के साथ संबद्ध होते हैं, यानी वो शरीर रूप परिणमित होकर जीव के साथ उस शरीर का संबंध पाया जाता है। उस कर्म स्कंध की शरीर यह संज्ञा है। अपनी भाषा में शरीर नाम कर्म के उदय में आहार वर्गना के पुद्गल स्कंध शरीर रूप परिणमित होते हैं और जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं। यदि शरीर नाम कर्म जीव के न हो तो जीव के अशरीरता का प्रसंग आता है। शरीर बिना का होगा वो, पहले बात है, गति नहीं हो तो गति रहित हो जाएगा वगैरह वगैरह। शरीर रहित होने से अमूर्त आत्मा के कर्मों का होना भी संभव नहीं है, क्योंकि मूर्त पुद्गल और अमूर्त आत्मा के संबंध होने का अभाव है। शंकाकार पूछते हैं, अमूर्त आत्मा और मूर्त पुद्गल, इन दोनों का यदि संबंध नहीं हो तो न होवे क्या हानि है? समाधान, नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर सभी संसारी जीवों के सिद्धों के समान होने की आपत्ति से संसार के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यहाँ क्या कहते हैं, तो अमूर्त आत्मा और मूर्त पुद्गल का तो अनादि संबंध है ही है, और वो है तो जीव संसारी है। अगर हम पूरा उसको अमूर्ति की मानेंगे तो उसको संसारी और सिद्ध कोई डिफरेंस नहीं है। शरीर के लिए आए हुए जीव संबद्ध यानी जीव के साथ संबंधित जो है पुद्गल संधों का, जिन जीव संबद्ध और उदय प्राप्त पुद्गलों के साथ परस्पर बंध किया जाता है, उन पुद्गल स्कंधों की शरीर बंधन यह संज्ञा कारण में कार्य के उपचार से अथवा कर्तृ निर्देश से है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, पहले हमने देखा था ना, वो शरीर रूप परिणमते हैं पुद्गल स्कंध, और शरीर रूप परिणमते हैं तो वो तो एक दूसरे के साथ भी बंधन रूप होते हैं कि नहीं? नहीं तो ऐसा रेती का ढेर होगा तो हमने उच्छेद किया तो फिर भी सर जाएगा, तो एक दूसरे के साथ भी वो तो चिपके हुए रहते हैं, बंधन में बन जाते हैं। फिर पढ़ते हैं, यहाँ पर शरीर के लिए आए हुए कौन? पुद्गल। शरीर के लिए आए हुए जीव संबद्ध पुद्गल स्कंधों का, जिन जीव संबद्ध और उदय प्राप्त पुद्गलों के साथ परस्पर बंध किया जाता है, उन पुद्गल स्कंधों की शरीर बंधन यह संज्ञा कारण में कार्य के उपचार से। कार्य क्या हुआ? शरीर का बंधन हुआ, तो उसका कारण क्या है? तो वो तो बंधन नाम कर्म। तो कारण में कार्य का उपचार, कर्म में ये शरीर बंधन का उपचार किया, अथवा कर्तृ निर्देश से है, यानी वो उसको कर्तापना यानी निमित्त की अपेक्षा से उसको करने वाला, उस अपेक्षा से उसको बंधन नाम कर्म कह दिया। यदि शरीर बंधन नाम कर्म जीव के न हो तो वालुका द्वारा बनाए गए पुरुष शरीर के समान यानी पुतले के समान जीव का शरीर होगा, क्योंकि परमाणुओं का परस्पर में बंध नहीं है। तो ऐसा कोई शेप ही नहीं टिकेगा ना, तो बिखर जाएगा वो, एक दूसरे के साथ चिपके हुए तो है ना, तो बंधन नाम कर्म है। उदय को प्राप्त जिन कर्म स्कंधों के द्वारा बंधन, वो ब के ऊपर बिंदी देना और ब करना उसको, बंधन नाम कर्म के उदय से बंध के लिए आए हुए शरीर संबंधी पुद्गल स्कंधों का मृष्टत्व अर्थात छिद्र रहित संश्लेष किया जाता है, उन पुद्गल स्कंधों की शरीर संघात यह संज्ञा है। स्कंध बराबर करना, पहले हमने शरीर नाम कर्म देखा, तो पुद्गल आते हैं, शरीर रूप परिणमते हैं, जीव के साथ संबंधित होते हैं। दूसरा बंधन नाम कर्म कहा, ये जो आए हुए हैं वो तो एक दूसरे के साथ बंधन को प्राप्त होते हैं। अब ये जो संघात बता रहे हैं तो एक बंधन को तो प्राप्त होते हैं, तो बीच बीच में कहीं होल रह जाते हैं, तो कहते कोई छिद्र रहित ऐसी रचना हो जाती है, यानी ठोस। देखो फिर से पढ़ते इसको, उदय को प्राप्त, चौथी लाइन, जिन कर्म स्कंधों के द्वारा बंधन नाम कर्म के उदय से बंध के लिए आए हुए शरीर संबंधी पुद्गल स्कंधों का, यानी बंधन तो हो रहा है पर कैसा बंधन हो रहा है, तो छिद्र रहित संश्लेष किया जाता है। संश्लेष संबंध समझते, संश्लेष क्या होता है, जो हमने बहुत बार, तो उस संश्लेष का अर्थ किससे समझना, हाँ, यानी संश्लेष संबंध कैसा है, जैसे हमने आपने कुछ गहने पहने तो उतार कर दूसरे भी पहनकर आ सकते हैं, वस्त्र भी चेंज करते हैं, बाहर जाना है तो दूसरे वस्त्र पहनकर जाएंगे, परंतु चश्मा आपने उतार के रखा तो इसका संबंध कैसा है, आपके साथ कुछ ऐसा संबंध नहीं है, शरीर भी एक भाव के लिए है, फिर भी तब तक उसको संश्लेष कह सकते हैं। कर्म कैसा है, जहाँ जीव जाएगा वहाँ तो जीव कर्म भी है, उसका शरीर भी है, तो उनका आपस में ऐसा संश्लेष संबंध है। जीव का तो एक भाव के लिए शरीर के साथ, और कर्म का तो अनेक भावों तक चलेगा, वो परमाणु जाएंगे तो दूसरे भी तो लिए हुए वहां तक, इसको संश्लेष कहते हैं। तो छिद्र रहित संश्लेष किया जाता है, उन पुद्गल स्कंधों की शरीर संघात यह संज्ञा है। यदि शरीर संघात नाम कर्म जीव के न हो तो तिल के मोदक के समान अपुष्ट शरीर वाला जीव हो जावे, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि तिल के मोदक के समान संश्लेष रहित परमाणु वाला शरीर पाया नहीं जाता। ये तिल के मोदक क्या समझाना चाहते हैं, हाँ गैप रहती है उस तिल के मोदक, यानी उसमें गैप रह जाएगी, इतना ही लेना है। जाति नाम कर्म के उदय से परतंत्र जिन कर्म स्कंधों के उदय से शरीर का आकार बनता है वह शरीर संस्थान नाम कर्म है। क्या कहते हैं, शरीर का वैसा ही आकार बनेगा वो जाति नाम कर्म के साथ उसके जो पूरक हो वैसा वैसा, इसलिए जाति नाम कर्म के उदय से परतंत्र बताया, तो यानी वहां उस जाति के जैसे आकार होगे वैसे ही संस्थान नाम कर्म का उदय होगा। शरीर संस्थान नाम कर्म के अभाव में जीव का शरीर आकृति रहित हो जाएगा। शंकाकार पूछते हैं, शरीर संस्थान नाम कर्म के अभाव मानने पर यदि जीव का शरीर आकृति रहित होता है तो होने दो। समाधान, नहीं, क्योंकि संस्थान के अभाव मानने पर शरीर के अभाव का प्रसंग आता है, और शरीर संस्थान निर्हेतुक माना नहीं जा सकता, यानी बिना कारण का बिना हेतु का नहीं माना जा सकता, क्योंकि द्विंद्रिय आदि जातियों में निर्हेतुक संस्थान के नियम का विरोध है, यानी उस जाति के वो संस्थान कुछ नियम रूप होते हैं, तथा जातियों में संस्थान का नियम असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि घोड़ा हाथी और हरिणों में संस्थान का नियम पाया जाता है, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जीव के शरीर का संस्थान सहेतुक है। सहेतुक है ना, वो कर्म वहां पर पाया जाता है। जिस कर्म स्कंद के उदय से शरीर के अंग उपांगों की निष्पत्ति होती है। अंग ने मुख्य अवयव, उसको अंग कहते हैं, और उपांग ने उसके भी और छोटे, जैसे हाथ पर ये अंग है, उंगलियां वगैरह जो है वो उपांग कहलाएगी। उस कर्म स्कंध का शरीर अंगोपांग यह नाम है। इस नाम कर्म के नहीं मानने पर आठों अंगों का और उपांगों का अभाव हो जाएगा। आठ अंग कहते हैं ना, जैसे अष्टांग नमस्कार आपने सुना होगा, आठ अंग कहलाते हैं। हाथ है, पैर है, माथा है, मस्तक है, छाती है, ये घुटने हैं, ये सब। किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि अंग और उपांगों का अभाव पाया नहीं जाता है। इस विषय में यह उपयोगी गाथा है। देखो वह आठ अंग बता रहे हैं, गाथा पहले पढ़ेंगे। नलया बाहु अतहा नियम्ब पुट्ठी उरोयसी संच अठे वधु अंगायुं देहन्नायुं उंगायुं। शरीर में दो पैर, दो हाथ, नितंब यानी कमर के पीछे का भाग, पीठ, हृदय और मस्तक, ये आठ अंग होते हैं। इनके सिवाय अन्य नाक, कान, आंख इत्यादि उपांग होते हैं। सिर में मूर्धा, कपाल, मस्तक, ललाट, शंख, भौह, कान, नाक, आंख, अक्षिकूट, हनु ठुड्डी यानी हनुवटी जिसको कहेंगे, कपोल, ऊपर और नीचे के ओष्ठ, सुरक्कणी यानी चाप, तालु और जीभ आदि उपांग होते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डी और उसकी संधियों अर्थात संयोग स्थानों, संधि यानी जॉइंट्स, संयोग स्थानों की निष्पत्ति होती है, उस कर्म की सहनन यह संज्ञा है। इस कर्म के अभाव में शरीर देवों के शरीर के समान सहनन रहित हो जाएगा। देव और नारकियों के कोई सहनन नहीं पाया जाता, एक इंद्रिय की भी नहीं होता। आहार शरीर बनता है उसमें भी नहीं पाया जाता सहनन। हड्डी नहीं है उसमें, हड्डी नहीं है, ठोस तो है परंतु वो विक्रिया करने वाला वो अलग शरीर है, वो सप्त धातु रहित बताया जाता है। शंका, यदि सहनन कर्म के अभाव में शरीर देव शरीर समान सहनन रहित होता है तो होने दो, क्या हानि है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्य के शरीरों में हाड़ों का समूह पाया जाता है। 55 पेज पर आते। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में वर्ण की उत्पत्ति होती है, उस कर्म स्कंध की वर्ण संज्ञा है, यानी वर्ण नाम कर्म है, उसके कारण शरीर का वर्ण नक्की होता है। इस कर्म के अभाव में अनियत वर्ण वाला शरीर हो जाएगा, किंतु ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि भौरा, कोयल, हंस, बगुला आदि में निश्चित वर्ण पाए जाते हैं। परंतु जो कार्य निर्हेतुक होता है उसमें कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि निर्हेतुक कार्य में नियम के मानने का विरोध है। जिस कर्म स्कंध के उदय से जीव के शरीर में जाति के प्रति नियत गंध उत्पन्न होता है, पहले वो आकार में भी लिया था, जाति से, जाति नाम कर्म से पराधीन है, वैसे यहाँ उस जाति नाम कर्म के साथ वैसा वैसा उस शरीर का गंध भी पाया जाएगा। आपने शायद वो चिड़ियाघर में देखा होगा ना, बाघ के पिंजरे में के अलग बाघ होते, वो तरस होते उसके, यानी उस जीवों के वैसी गंध पाई जाती है। उस कर्म स्कंध की गंध या संज्ञा कारण में कार्य के उपचार से की गई है। यदि गंध नाम कर्म न हो तो जीव के शरीर की गंध अनियत हो जाएगी। शंकाकार पूछते, यदि गंध नाम कर्म के अभाव में जीव के शरीर की गंध अनियत होती है तो होने दो, क्या हानि है? समाधान, नहीं, क्योंकि हाथी और वाघ आदि में नियत गंध पाई जाती है। ये गपांध ये ऐसा हुआ ना, पा बाद में चाहिए, गंध पाई जाती है। जिस कर्म स्कंध के उदय से जीव के शरीर में जाति के प्रति नियत तिक्तादि रस उत्पन्न हो, उस कर्म स्कंध की रसह्य संज्ञा है। नहीं समझे, जैसे जो वनस्पति है मिर्ची का वृक्ष है तो उसमें वो तो तिक्त रस ही पाया जाएगा, फल है उसके विशिष्ट उसकी मिठास होती है, उस टाइप की मिठास होती है, तो वैसा वैसा रस पाया जाता है। नीम का झाड़ है तो उसमें वो कड़वा रस पाया जाएगा। इस कर्म के अभाव में जीव के शरीर में जाति प्रति नियत रस नहीं होता होगा, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि नीम आम और नींबू आदि में नियत रस पाया जाता है। जिस कर्म स्कंध के उदय से जीव के शरीर में जाति प्रति नियत स्पर्श उत्पन्न होता है, प्रतिनियत नहीं, जाति प्रति नियत, उस कर्म स्कंध की कारण में कार्य के उपचार से स्पर्श यह संज्ञा है। यदि स्पर्श नाम कर्म न हो तो जीव का शरीर अनियत स्पर्श वाला होगा, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि कमल के स्वपुष्प फल और कमल लाल आदि में नियत स्पर्श पाया जाता है। यानी कमल का जो हम झाड़ कहेंगे, वृक्ष कहेंगे, उसके नाल जुदी है, उसके पत्ते जुदे हैं, उसके फूल अलग है, उसके अपना अपना नियत पर्टिकुलर स्पर्श पाया जाता है। पूर्व और उत्तर शरीरों के अंतरालवर्ती एक दो और तीन समय में वर्तमान जीव के यानी विग्रह गति मोड़ वाली गति, जिस कर्म के उदय से जीव प्रदेशों का विशिष्ट आकार विशेष होता है, उस कर्म की अनुपूर्वी यह संज्ञा है। अनुपूर्वी का काम क्या है? एक भव से दूसरे भव में जा रहा है तो संसार नाम कर्म का उदय तो वहाँ पहुँचने पर होगा, शरीर के परमाणु ग्रहण करने पर। उसी समय शरीर नाम कर्म और संस्थान नाम कर्म का उदय एक साथ चालू हो जाता है। वो मान लेते हैं ना, यहाँ कोई हमने कहते हैं बहुत बार उदाहरण दिया था, मनुष्य मर गया और घोड़े में उत्पन्न हो रहा है, तो घोड़े का आकार, घोड़े के शरीर के परमाणु जब वहाँ नाम कर्म जाति के चालू हो जाएंगे तब होगा। विग्रह गति में उसका आकार वो पूर्व भव का चालू रहे, यानी मनुष्य का आकार होगा। यह देखो, इसको अनुपूर्व यह संज्ञा है। शंकाकार पूछते, संस्थान नाम कर्म से आकार विशेष उत्पन्न होता है, इसलिए अनुपूर्वी की परिकल्पना निरर्थक है, उसको कल्पना मान रहे तो निरर्थक भी बता रहे, क्योंकि संस्थान नाम कर्म के उदय से तो आकार मिल जाता है, तो इसको अन्य फिर दोबारा यह आकार वाली बात क्यों कहां से लाई, ये कहना चाहते नहीं, क्योंकि शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय से ऊपर उदय में आने वाले उस संस्थान नाम कर्म का विग्रह गति के काल में उदय का अभाव पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ये नाम कर्म के जो उदय स्थान है, कौन से प्रकृतियों का उदय कब किस कभी किसको होता है, उसके सब निश्चित स्थान पाए जाते हैं। कौन कौन से है वो? नाम कर्म के उदय स्थान
23, 25, 26,
उदय स्थान पूछ रहे
आप, वो बंद स्थान
बंद स्थान है।
अच्छा, उसके नाम बताना। वो उदय के अलग अलग काल जो होते हैं, नाम कर्म के जो उदय काल है अलग अलग, उन नाम कर्मों के उदय काल की बात मैं कर रही
हूँ। नाम बता औदारिक शरीर दान करो। वैसी
देखो विग्रह गति में विशिष्ट प्रकृतियों का उदय है। तो विग्रह गति भी बताएंगे, फिर वहां पहुंचने पर शरीर मिश्र काल कहते हैं उसको, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले। फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे उसको। उसके बाद उच्छ्वास पर्याप्ति काल कहेंगे,
भाषा पर्याप्ति,
और भाषा पर्याप्ति काल। उसके बाद
बस भाषा पर्याप्ति,
भाषा पर्याप्ति काल उसको मरण तक कहेंगे। पांच अलग अलग वेरिएशन होते हैं। तो कौन से प्रकृतियों का उदय कहाँ पर शुरू होता है, ख्याल में आई बात?
नहीं,
मन पर्याप्ति में नाम कर्म का कोई विशेष योगदान नहीं है। भाषा पर्याप्ति पूरी हुई है, स्वर नाम कर्म वहाँ शुरू हो जाता है, बाकी उसका कुछ अन्य बात नहीं। उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हुई तो उच्छ्वास नाम कर्म का उदय चालू हो गया। शरीर पर्याप्ति पूरा हुई तो विहाय गति और उसका नाम उदय चालू हो जाता है, परघात विहाय गति।
संस्थान नाम कर्म का वो तो पहले समय,
संस्थान पहले समय,
पहले समय
आतप उद्योग भी वहाँ पर चालू हो जाता है। और वो पहले समय से शरीर जब भी आया है वहाँ संस्थान नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, साधारण या प्रत्येक नाम कर्म, वो वहाँ चालू हो जाते हैं। अरे कर्मकांड में बहुत बार हुआ है ये, नाम कर्म के उदय स्थान पूरा बहुत बार विस्तार से हुआ अपना ही। इसमें कितना आता है मालूम नहीं, अभी
आएगा ना स्थान है ना।
अनुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति, वो भी मोड़ वाले, रुजु गति से जाने वाले को डायरेक्ट नया आकार मिल जाता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो
विग्रह काल विग्रह गति,
वो सहन नाम कर्म वगैरह चालू, सहनन है, संस्थान है,
वो पहले समय से चालू हो जाएगा।
शरीर नाम कर्म है, प्रत्येक या साधारण है, देखो समाधान पहेंगे। शंकाकार ने पूछा था कि अनुपूर्वी तो परिकल्पना है और वो निरर्थक है, तो कहते नहीं, क्योंकि शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय से ऊपर, यानी प्रथम समय से लेकर बाद में उदय में आने वाले उस संस्थान नाम कर्म का विग्रह गति के काल में उदय का अभाव पाया जाता है। यानी विग्रह गति में उसका अभाव है तो वहाँ वो वाला आकार नया आकार तो नहीं ग्रहण करेगा, तो वहाँ कुछ न कुछ आकार तो रहेगा ही जीव का। यदि अनुपूर्वी नाम कर्म न हो तो विग्रह गति के काल में जीव अनियत संस्थान वाला हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि जाति प्रति नियत संस्थान विग्रह काल में पाया जाता है। फिर शंका, पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को नहीं ग्रहण करके स्थित, यानी विग्रह गति में पूर्व शरीर तो छोड़ दिया और नया शरीर अभी ग्रहण किया नहीं है, ये परमाणु अभी नहीं है, वो विग्रह गति में है। तो कहते पूर्व शरीर को छोड़कर, एक यहाँ स्पेस चाहिए, दूसरे शरीर को नहीं ग्रहण करके स्थित जीव का इच्छित गति में गमन किस कर्म से होता है, यानी वो कौन से गति में जाएगा, ये भी कैसा गमन होता है उसका। तो उसके लिए भी कहते हैं अनुपूर्वी नाम कर्म से इच्छित गति में गमन होता है। इच्छित का अर्थ है हमें चाहिए वो, ऐसा नहीं लेना उसका अर्थ पर्टिकुलर गति में। शंकाकार पूछता है, हाँ ये विहाय गति भी बाद में उत्पन्न होती, शरीर नाम कर्म पूरा, यानी शरीर पर्याप्ति पूरी होने,
पूरी होने।
विहाय गति नाम कर्म से इच्छित गति में गमन क्यों नहीं होता, लेकिन गमन संबंधी है ना वो, तो ये तो विहार गति तो केवल इंद्रिय आदि से है, एक इंद्रिय को तो विहार गति भी नहीं है। ये जो विग्रह गति का गमन किसी वो विहार गति के कारण नहीं होता। शंकाकार पूछता है विहार गति नाम कर्म से इच्छित गति में गमन क्यों नहीं होता है? समाधान, नहीं क्योंकि विहार गति नाम कर्म का औदारिकादि तीनों शरीरों के उदय के बिना उदय नहीं होता। नीचे क्या क्या दिया है फुटनोट में? नीचे दो नंबर की फुटनोट देखते जरा, ये पहले से बढ़ते। पूर्व शरीराकार अविनाशो यस्य उदयाद भवति तद अनुपूर्व्य नामा, यानी पूर्व शरीर के आकार जिसके उदय में वो विनाश नहीं प्राप्त होता उसको अनुपूर्वी नाम कहते हैं। दूसरी फुटनोट, ननु च तन निर्माण नाम कर्म साध्यम फलम न अनुपूर्व्या नाम उदय कृतम। ये तो निर्माण नाम कर्म के कारण ये होता है, तो अनुपूर्वी के वहां उदय कुछ नहीं करता है ऐसा कहते हैं। न एवं दोष है, ऐसा दोष नहीं है। पूर्वायु उच्छेद समकाल एव, यानी पहले वाले आयु के नष्ट होने के समय में ही पूर्व शरीर निवृत्तो निर्माण नामोदयो निवर्तते, यानी पूर्व का शरीर उत्पन्न हुआ था निर्माण नाम कर्म के कारण, वो भी अभी नहीं रहा। तस्मिन् निवृत्ते अष्टविध कर्मम तेजस कर्मण शरीर संबंधिनः आत्मनः पूर्व शरीर संस्थान अविनाश कारणम अनुपूर्व नामोदयम उपैति। यानी अभी निर्माण नाम कर्म पूर्व शरीर का निर्माण नाम कर्म तो नहीं रहा। तो कहते जो आठ प्रकार के कर्म तेजस कर्म संबंधी शरीर और आत्मा के, पूर्व शरीर का जो संस्थान का विनाश नहीं होता है वो अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से समझना। तस्य कालो विग्रहगत जघन्य एक समय उत्कर्षेन त्रण समय। अभी अनुपूर्वी का उदय कितने काल तक होगा?
मैक्सिमम तीन समय,
एक समय से तीन समय, क्योंकि तीन ही मोड मैक्सिमम ले सकता है, तो तीन समय तक। रुजुगत तो पूर्व शरीर आकार विनाशे सती, परंतु रुजुगति में जो उसी समय पहुंचता है तो पूर्व शरीर के आकार का विनाश होने पर उत्तर शरीर योग्य पुद्गल ग्रहणात निर्माण निमारण हुआ है। निर्माण नीचे फुटनोट में निमारण हुआ, निर्माण नामक नाम कर्मोदय व्यापार, यानी उत्तर शरीर के योग्य पुद्गलों के जो निर्माण नाम कर्म का व्यापार वहां शुरू हो जाता है। शंका, आकार विशेष को बनाए रखने में व्यापार करने वाले अनुपूर्वी इच्छित गति में गमन का कारण कैसे होती है? यानी आकार तो पूर्व का कर रहे और कहते हैं अन्य गति में विशिष्ट पर्टिकुलर गति में जाने के लिए क्यों कारणभूत होगी? उसका समाधान, नहीं क्योंकि अनुपूर्वी का दोनों भी कार्यों के व्यापार में विरोध का अभाव है। अर्थात विग्रह गति में आकार विशेष को बनाए रखना और इच्छित गति में गमन करना ना, ये दोनों ही अनुपूर्वी नाम कर्म के कार्य है। अब शंका का थोड़े छोड़ने वाला है, जैसे रुजुगति से जाने वाले को कहाँ अनुपूर्वी का होता है। शंका पूछते हैं पूर्व शरीर को न छोड़ते हुए जीव के विग्रह गति में अथवा रुजु गति में जो गमन होता है वह किस कर्म का फल है? पूर्व शरीर को न छोड़ने वाले जीव होता ही नहीं है, छोड़े बिना तो गमन होता ही नहीं। पूर्व शरीर को छोड़कर ही गमन होगा। तो इसने उसका अर्थ अलग समझा, नहीं क्योंकि पूर्व शरीर को नहीं छोड़ने वाले उस जीव के पूर्व क्षेत्र के परित्याग के अभाव से गमन का अभाव है। पूर्व शरीर को नहीं छोड़ने पर भी जीव प्रदेशों का जो प्रसार होता है वह निष्कारण नहीं है, क्योंकि वह आगामी भव संबंधी आयु कर्म के सत्व का फल है। ये जो समुद्घात होता है ना मारणांतिक, उसकी बात है। यानी मारणांतिक समुद्घात भी बिना कारण के नहीं होता है, उसके आगामी भव संबंधी आयु कर्म का बंधा हुआ उसकी सत्ता पाई जाती है, उस सत्व के कारण ही उसका वहाँ मारणांतिक होता है। शंका, वर्ण गंध रस और स्पर्श नाम कर्मों के वर्ण गंध रस और स्पर्श स कारण होते हैं या निष्कारण? क्या कहा, ये कौन से नाम कर्म लिए? वर्ण गंध रस और स्पर्श नाम कर्म, और उन नाम कर्मों के वर्ण गंध रस स्पर्श सकारण होते हैं या निष्कारण? नहीं, क्या प्रश्न पूछा, समझ में आया क्या पूछा? हाँ अश्विन भाई
सर, निष्कारण वर्ण गंध रस स्पर्श
किसका?
शरीर के।
कहाँ लिखा है शरीर? नाम कर्म को भी कुछ वर्ण होगा कि नहीं होगा? कर्मों के कुछ कलर होगा कि नहीं?
नहीं, नहीं, वो तो धवल।
कर्म को रंग होता है कि नहीं होता है?
धवल, धवल सफेद होते हैं।
पांचवे वर्ण के परमाणु होते हैं।
कार्बन वर्ण। अच्छा, मेरे को इसे क्या लगता सफेद?
पांचवे हो गए हो। वो विशेष रूप से जाता है, वो धवल दिखता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श नाम कर्मों के वर्ण गंध रस स्पर्श सकारण होते या निष्कारण, ये प्रश्न पूछा। उनको भी अपना वर्ण गंध होगा कि नहीं होगा? प्रथम पक्ष में अनवस्था दोष आता है, सकारण हो गए तो उसके लिए सकारण, तो वो वर्ण होने के लिए और कारण क्या? नहीं समझे? शरीर का वर्ण होने के लिए तो नाम कर्म, अभी वर्ण की बात करेंगे, शरीर जो है काला पीला नीला लाल जो कुछ है तो उसके लिए वर्ण नाम कर्म का उदय, तो नाम कर्म को भी वर्ण होगा वो अगर सकारण मानते हैं तो उसके लिए और कुछ चाहिए? ये कहना चाहते हैं उनका, ये स्वयं ही पूछ रहे हैं। यानी शंकाकार की दलील क्या क्या वो पहले सुन लो। प्रथम पक्ष में अनवस्था दोष, अनवस्था दोष कहते शरीर के लिए नाम कर्म, फिर नाम कर्म के वर्ण के लिए और कुछ चाहिए कारण, और उसके लिए फिर उसका कारण, उसके लिए इसको कहेंगे अनवस्था दोष। तो कहते हैं अनवस्था दोष आता है। द्वितीय पक्ष के मानने पर यानी निष्कारण होता है बिना कारण, कोई हेतु नहीं है, शेष नौ कर्मों के वर्ण गंध रस और स्पर्श भी निष्कारण होना चाहिए। अगर कर्म के स्पर्श रस गंध वर्ण बिना कारण के होते हैं तो शरीर के भी बिना कारण के होते हैं, ऐसा मानो, ये उनका कहना है। यानी स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म बेकार के, ऐसा उनका कहना है थोड़ी बहुत, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। समाधान, शंका ख्याल में है तो अभी समाधान समझेगा। यहाँ पर उक्त शंका का परिहार कहते हैं, प्रथम पक्ष में कहा गया अनवस्था दोष तो प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वैसा माना नहीं गया है। न द्वितीय पक्ष में दिया गया दोष भी प्राप्त होता है क्योंकि काल द्रव्य के समान द्विस्वभावी होने से इन वर्णादिक के उभयत्र व्यापार करने में कोई विरोध नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? काल द्रव्य जो अन्य द्रव्यों के परिणमन हेतुत्व है, तो काल द्रव्य के लिए कौन है? तो वो स्वयं
है।
तो ऐसे ये जो है वर्णादि जो, तो वो नाम कर्म है, वो स्वयं अपने लिए हेतु हो सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। अन्य कोई कारण नहीं है। विशेषार्थ, जिस प्रकार काल द्रव्य अपने आप के परिवर्तन और अन्य द्रव्य के परिवर्तन का कारण होता है, उसी प्रकार वर्णादिक नाम कर्म भी अपने वर्णादिक के तथा अपने से भिन्न परपुद्गलों के वर्णादिक के कारण होते हैं। इसलिए इनको काल द्रव्य के समान द्विस्वभावी कहा गया है।
तो हम लोग हमेशा देखते थे कि कार्मण शरीर हमेशा सफेद डबल अरे सफेद होता है।
कार्मण शरीर सफेद होता है ऐसा जो आपने सुना है, तो उसका तो फाइनल रिजल्ट सफेद दिख रहा है आपको। मिश्र सोप सही सही है ना। वो कार्मण काय योग में हमने जो विग्रह गति में जीव का वर्ण जो द्रव्य जो लेशा कहते हैं वो सफेद का है। शुक्ल कही
शुक्ल नहीं शुक्ल
शुक्ल मिश्र अवस्था में कपड़ पांचों ही वर्ण वाले होते हैं उसमें, परंतु विश्वसोप सहित है ना वो पूरा स्कंद दिख रहा है आपको, वो सफेद दिखता है। देखो अनंतानंत पुद्गलों से भरपूर जीव के जिन कर्म स्कंदों के द्वारा अगुरु लघुपना होता है, उन पुद्गल स्कंदों की अगुरु लघु यह संज्ञा कारण में कार्य के उपचार से की गई है। यदि जीव के अगुरु लघु कर्म न हो तो या तो जीव लोहे के गोले के समान भारी हो जाएगा अथवा आग के तूल के समान। ये आग का तूल है ना, वो फूल होता है ना एक रुई के फूल के समान हल्का हो जाएगा। कपास कपास होता है ना, किंतु ऐसा है नहीं क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। तो मुझे मनीषा बहन ये समझाओ, एक किलो लोहा भारी है कि एक किलो कपास भारी है? अरे वाह बहुत अच्छा। लोग हमेशा आप विचार करके बोलती हो, अच्छी बात है। नहीं तो लोग कहते कपास तो हल्का है और हमने एक किलो की कंडीशन डाली थी। यानी ये अगुरु लघु कर्म ऐसा है कि जो शरीर है ना हल्का अति हल्का होता है ना अति भारी होता है। शंकाकार पूछ रहे हैं अगुरु लघु तो जीव का स्वाभाविक गुण है, वो सामान्य गुण में है ना। अगुरु लघु नाम का एक गुण है, दूसरा भी षट गुण वाला वो भी अगुरु लघु कहलाता है। फिर उसे यहाँ कर्म प्रकृतियों में क्यों गिनाया? वो कर्म दो बार हुआ, एक कर्म निकाल दो। कर्म प्रकृतियों में क्यों गिनाया? शंकाकार को लगता है कि जीव का जो गुण है उसी को यहाँ कर्म प्रकृति में डाला है। समाधान नहीं, क्योंकि संसार अवस्था में कर्म परतंत्र जीव में उस स्वाभाविक अगुरु लघु गुण का अभाव है। यदि कहा जाए कि स्वभाव का विनाश होने पर जीव का विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि लक्षण के विनाश होने पर लक्ष्य का विनाश होता है, ऐसा न्याय है, सो भी बात यह बात नहीं है। अर्थात अगुरु लघु गुण के विनाश हो जाने पर भी जीव का विनाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और दर्शन को छोड़कर अगुरु लघुत्व जीव का लक्षण नहीं है। चूंकि वह आकाश आदि अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जीव का अगुरु लघुत्व कर्म के द्वारा नहीं किया जाता, किंतु जीव में भरा हुआ जो पुद्गल स्कंद है वह जिस कर्म के उदय से जीव के भारी या हल्का प्राप्त नहीं होता है, वह अगुरु लघु कर्म यहाँ विवक्षित है। यानी वो यहाँ पता है ना अनंतानंत पुद्गलों से भरपूर, भरपूर यानी उसे भरा हुआ जीव, उस पुद्गल स्कंद के हल्का भारीपना नहीं होता, ये बात बताए। अतएव यहाँ पर जीव विषयक अगुरु लघुत्व का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी जीव के गुण वो जुदे हैं और यहाँ न हल्का न भारी ये जो शरीर के पुद्गल स्कंद उसने ग्रहण किए हैं उसकी बात यहाँ हो रही है। ये सामान्य और वो जीव का जो षट गुण वाला कितने ही हो गए ना गुरु लक्ष्मी नाम के, वो यहाँ पर नहीं लेना, ये शरीर की बात है। जैसे हम कहें ना अवर्ण नाम कर्म के जीव के वो जो शरीर का वर्ण होता है, जीव तो अवर्ण स्वरूप ही है, रस गंध स्पर्श वाला है। अभी उपघात नाम कर्म, स्वयं प्राप्त होने वाले घात को उपघात अर्थात आत्मघात कहते हैं। जो कर्म अवयवों को जीव की पीड़ा का कारण बना देता है अथवा जीव पीड़ा के कारण स्वरूप विष खड़ग पाश आदि द्रव्यों को जीव के लिए ढोता है अर्थात लाकर संयुक्त करता है, वह उपघात नाम कर्म कहलाता है। शंकाकार, जीव को पीड़ा करने वाले अवयव कौन कौन हैं? समाधान, महाशृंग यानी 12 सिंगा के समान बड़े सिंह, क्योंकि वो कहीं अटक जाए तो वो स्वयं उसके घात का कारण बन सकता है। लंबे स्तन, विशाल तोंद वाला पेट, बहुत बड़ा पेट आदि जीव को पीड़ा करने वाले अवयव है। यदि उपघात नाम कर्म जीव के न हो तो वात बात हुआ, वात पित्त और कफ से दूषित शरीर से जीव की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा नहीं पाया जाता। यानी शरीर में दोष उत्पन्न होता है तो जीव को पीड़ा होती है, तो उपघात का नाम कर्म नहीं होता तो जीव को पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए थी, ये कहना है। शंका, जीव के दुख उत्पन्न करने में तो असातावेन्य कर्म का व्यापार होता है। आप कहते हो शरीर के कारण इसको दुख होता है, परंतु तो असाता के कारण होता है, ये उसका प्रश्न है। समाधान, जीव के दुख उत्पन्न करने में असाता वेदनीय कर्म का व्यापार रहा आवे, किंतु उपघात कर्म भी उस असाता वेदनीय का सहकारी कारण होता है, क्योंकि उसके उदय के निमित्त से दुखकर पुद्गल द्रव्य का संपादन होता है यानी समागम होता है। दुखकर यानी दुख रूपी, दुख करने वाले। परजीवों के घात को परघात कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में पर को घात करने के कारणभूत पुद्गल निष्पन्न होते हैं वह परघात नाम कर्म कहलाता है। जैसे सांप की डाढ़ों में विष, बिच्छू की पूंछ में पर दुख के कारणभूत पुद्गलों का संचय, सिंह व्याघ्र और छल ने शबल चीता, अभी यह क्या नाम आया ना, कुछ शबल आया था ना, शबल अभी दो तीन नाम आए थे ना,
शबल नहीं था वहां पे,
शबल ऐसा कुछ था ना। कितने नंबर पर शबल होता है और यहाँ छबल, शबल छल वही होगा, छल यानी चीता होना चाहिए। पेज 52 पर आया था और ये पेज नंबर 59 पर। वहां शबल लिखा था और यहाँ छल लिखते हैं या शबल लिखते हैं, चीता। आदि में तीक्ष्ण नख और दंत तथा सिंगी, वत्स्यनाभि और धत्तुरा आदि विषैले वृक्ष पर को दुख उत्पन्न करने वाले हैं। साठ नंबर का पेज, ये सब नाम और उसके जो कार्य है ना वो पंचलब्धि पुस्तक में दिए है विस्तार से, कर्मकांड में हमने सीखे थे इसको। सांस लेने को उच्छ्वास कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव उच्छ्वास और निश्वास रूप कार्य के उत्पादन में समर्थ होता है, उस कर्म की उच्छ्वास यह संज्ञा कारण में कार्य के उपचार से है। यदि उच्छ्वास नाम कर्म न हो तो जीव श्वास रहित हो जाए, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि संसार में उच्छ्वास से रहित जीव पाए नहीं जाते। खूब तपने को हाँ, उसमें उच्छ्वास हर समय थोड़ा है, वो तो इतने उच्छ्वास तो चल ही रहा है उनका, देरी से होता है
कार्य,
उससे रहित कहाँ है। हाँ है ना, उनके उच्छ्वास नाम कर्म का उदय उनके भी है। हाँ, जो कुछ यथायोग्य उस वो शरीर की योग्यता है वैसे उसके होगी। वैसे तो ये जो कह रहे हैं तो अपर्याप्त तो जो जीव है उनमें तो उच्छ्वास नाम कर्म ही नहीं है, ये इन जनरल बात की है। यानी जिनके वो उच्छ्वास नाम कर्म पाया जाता है उनके उच्छ्वास भी पाया जाता है, यदि वो नहीं तो बिल्कुल उच्छ्वास से रहित ही हो जाते सारे ही जीव। खूब तपने को आतप कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में आतप होता है उस कर्म की आतप यह संज्ञा है। यदि आतप नाम कर्म न हो तो पृथ्वी का ही जीवों के शरीर रूप सूर्यमंडल में आतप का अभाव हो जाए, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। आतप नाम किसका है? उष्णता सहित प्रकाश को आतप कहते हैं। शंकाकार पूछते हैं, इस प्रकार आतप शब्द का अर्थ करने पर तेजस का जीव में भी आतप नाम कर्म का उदय प्राप्त होता है? उसका समाधान, ये तेजस का ही कौन की कोई आतप होता ही नहीं है, उनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि तेजस का ही नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई उस अग्नि की उष्ण प्रभा में सकल प्रभावों की अविनाभावी उष्णता का अभाव होने से उसका आतप के साथ समानता का अभाव है। यानी क्या कहते हैं, वो अग्नि की उष्ण प्रभा है परंतु अन्य अन्य प्रभावों की अन्य अन्य उष्णता और प्रभाव अलग अलग होती है, वो सभी उसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि जो सूर्य की जो उष्णता और प्रभाव है वो उसमें नहीं है, ये उसका कहना है। तेजस कहते ना अग्नि आतम नाम कर्म होता ही नहीं, मात्र पृथ्वी कायकों में होता है, वो भी सूर्य विमान के, ये नियम है, अन्यत्र कहीं पर भी सूर्य विमान के पृथ्वी का एक बाद ही है, तो अन्यत्र कहीं उसका उदय नहीं है। ये जो अग्नि कायकों का जो तेज है कहो या उसने ऊपर जो कोई प्रकाश होता होगा वो वहाँ वो उष्ण जो स्पर्श नाम कर्म है उसका उदय है। उद्योतन अर्थात चमकने को उद्योत कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में उद्योत उत्पन्न होता है वह उद्योत नाम कर्म है। यदि उद्योत नाम कर्म न हो तो चंद्र नक्षत्र तारा और खद्योत यानी जुगनू नामक कीड़ा आदि में शरीरों के उद्योत न होवेगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। यानी ऐसे ये जो उद्योत किसमें किसमें पाया जाएगा, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय त्रियंश उनमें उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाता है। और ये जो हम देखते हैं ना ग्रह नक्षत्र तारे जो कुछ चंद्र नक्षत्र तारे वगैरह जो है उसमें जो चमक है
चमक।
वो भी उद्योत नाम कर्म के उदय से है। तो विहाय गति की बात करेंगे, विहायस नाम ना आतप है ना उद्योत है, क्योंकि ये दोनों ही शुभ प्रकृतियां हैं, अग्नि का एक क्यों नहीं होती। आतप तो केवल पृथ्वी का एक सूर्य विमान और उद्योत है वो तो अनेक, देखें जैसे पंचेंद्रिय अनेक पर्याप्त जीवों के होते हैं, अपर्याप्त उनके तो नहीं होता है, उसके भी शरीर नाम कर्म पूरा होने पर उसका उदय चालू हो जाता है, अपर्याप्त उनके भी नहीं पाए जाए। विहायस नाम आकाश का है, आकाश में गमन को विहाय गति कहते हैं। जिन कर्मस्कंधों के उदय से जीव का आकाश में गमन होता है उनकी विहाय गति है, संज्ञा है। आकाश में गमन होता है, उड़कर जाने वाले वो आकाश नहीं समझना, ये पृथ्वी पर चलना वो भी आकाश में ही गमन है। शंका का पूछ रहे, तिर्यंचर मनुष्यों का भूमि पर गमन किस कर्म के उदय से होता है? समाधान, विहाय गति नाम कर्म के उदय से, क्योंकि विहस्ति मात्र यानी 12 अंगुल प्रमाण पांव वाले जीव प्रदेशों के द्वारा भूमि को व्याप्त करके जीव के समस्त प्रदेशों का आकाश में गमन पाया जाता है। क्या कहना है? ये समझ में क्या चलते हैं तो जमीन पर कितना पार शरीर का टेक गया है,
खाली पैर
जो अपने इतने प्रमाण है, एक भी प्रमाण है पैर, उतने ही प्रदेश भूमि को स्पर्श किए, भूमि को व्याप्त कर रहे हैं और बाकी जो शरीर है
आकाश में गमन
तो आकाश में ही जा रहा है ना। अब जिस कर्म के उदय से जीवों के त्रसपना होता है उस कर्म की त्रस यह संज्ञा कारण में कार्य के उपचार से है। यदि त्रस नाम कर्म न हो तो द्विन्द्रिय आदि जीवों का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि द्विन्द्रिय आदि जीवों का सद्भाव पाया जाता है। जिस कर्म के उदय से जीव स्थावरपने को प्राप्त होता है उस कर्म की स्थावर यह संज्ञा है। जीव को भी स्थावर कहते हैं, कर्म को भी स्थावर कहते हैं। यदि स्थावर नाम कर्म न हो तो स्थावर जीवों का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि स्थावर जीवों का सद्भाव पाया जाता है। जिस कर्म के उदय से जीव बादर काय वालों में उत्पन्न होता है उस कर्म की बादर यह संज्ञा है। यदि बादर नाम कर्म न हो तो बादर जीवों का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि प्रतिघाती शरीर वाले जीवों की भी उपलब्धि होती है। ये बादर कैसे है तो प्रतिघाती शरीर है, प्रतिघात से युक्त है। प्रतिघात समझते हैं, जैसे ये चीज है ये उसके थ्रू एंड थ्रू नहीं जाती, इसको रोकती है, प्रतिघात करती है। तो बादर जीवों का शरीर कैसा है तो प्रतिघात युक्त होता है और सूक्ष्म जीवों का शरीर वो प्रतिघात बिना का होता है। सूक्ष्म जीवों के शरीर वो तो एक इंद्रिय में सूक्ष्म नाम के पाए जाते हैं, ना वो कट सकते हैं, ना जल सकते हैं, ना वायु से बह सकते हैं, ना पानी में गल सकते हैं, यानी वो तो उसको कोई अटकाव नहीं है। तो जिस कर्म के उदय से पेज नंबर 62 पर आए, जिस कर्म के उदय से जीव सूक्ष्मता को प्राप्त होता है उस कर्म की सूक्ष्म यह संज्ञा है। यदि सूक्ष्म नाम कर्म न हो तो सूक्ष्म जीवों का अभाव हो जाए, किंतु ऐसा है नहीं। क्योंकि अपने प्रतिपक्षी के अभाव में बादर काई जीवों के भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी सूक्ष्म नहीं होगे तो बादर भी नहीं होगे। जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होता है उस कर्म की पर्याप्त यह संज्ञा है। यदि पर्याप्त नाम कर्म न हो तो सभी जीव अपर्याप्त ही हो जाएंगे, किंतु ऐसा है नहीं क्योंकि पर्याप्त जीव का भी सद्भाव पाया जाता है। जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्तियों को समाप्त करने के लिए समर्थ नहीं होता है उस कर्म की अपर्याप्त नाम यह संज्ञा है। यदि अपर्याप्त नाम कर्म न हो तो सभी पर्याप्त ही होवेंगे, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रतिपक्षी के अभाव में विवक्षित के भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी अपर्याप्त भी नहीं होगी तो पर्याप्त भी नहीं रहेगा। जिस कर्म के उदय से जीव प्रत्येक शरीरी होता है, उस कर्म की प्रत्येक शरीर यह संज्ञा है। यदि प्रत्येक शरीर नाम कर्म न हो तो एक शरीर में एक जीव का ही उपलम्ब नहीं होगा, किंतु ऐसा ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक शरीरी जीवों का चाहिए, जीवों का सद्भाव बाधा रहित पाया जाता है। प्रत्येक शरीर समझते नहीं, एक जीव उसका एक शरीर था, या एक शरीर उसका एक स्वामी जी, उस शरीर के आधार से अन्य उत्पन्न हो गए, वो सचित्त योनि, उसकी बात नहीं लेनी, वो बात अलग है। परंतु ये मनुष्य का शरीर है और उसका स्वामी एक मनुष्य जीव है। 63 पेज पर जिस कर्म के उदय से जीव साधारण शरीर ही होता है, उस कर्म की साधारण शरीर यह संज्ञा है। यानी जिसको हम निगोद कहते हैं, यदि साधारण नाम कर्म न हो तो सभी जीव प्रत्येक शरीरी ही हो जाएंगे, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रतिपक्षी के अभाव में विवक्षी जीव के भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। जिस कर्म के उदय से रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, अस्थि, मांस और शुक्र, इन सात धातुओं की स्थिरता अर्थात अविनाश व अगलन चाहिए, अलगन हुआ है, अगलन ऊपर भी लिखा है, अगलनम चौथी लाइन में, इसको अगलन करो। यानी सात धातुओं की स्थिरता होती है, यानी वो अन्य रूप परिवर्तित नहीं होता है, वह स्थिर नाम कर्म है। यदि स्थिर नाम कर्म न हो तो इन धातुओं का स्थिरता के अभाव से गलना ही होगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि हानि और वृद्धि के बिना इन धातुओं का अवस्थान देखा जाता है। जिस कर्म के उदय से रस, रुधिर, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इन धातुओं का परिणमन होता है, वह अस्थिर नाम कर्म है। इस विषय में यह उपयोगी श्लोक है। यानी ये जो है उनका परिणमन होता है ना, तो जो नाम बताए ना, रस है वो रुधिर रूप हो जाएंगे, वो मेधा रूप, मज्जा रूप, अस्थि रूप, इस तरह से इतने इतने समय में वो टर्न होते हैं और फिर परमाणु निकल जाते हैं। यानी अपने रूप से कुछ काल तक रहेंगे, फिर अन्य रूप से हो जाएगी, उसको स्थिर और अस्थिर दोनों का कार्य चलता है। इस विषय में यह उपयोगी श्लोक है 11 नंबर का। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रवर्तते, मेदसौ स्थित तो मज्जा मच्छ शुक्रम ततः प्रजा। रस से रक्त बनता है, ये बताए ना, वो अपने रूप से रहेगा कुछ काल तक, बाद में उसी का रस रूप, रस का रक्त रूप परिणमन हो जाएगा। रक्त से मांस उत्पन्न होता है, मांस से मेदा पैदा होती है, मेदा से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा पैदा होता है, मज्जा यानी स्नायु, यहाँ मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है।
मज्जा तो ये
मज्जा यानी मैरो होगा,
बोन मैरो,
बोन मैरो। हड्डी के अंदर होती है ना मज्जा, ऐसा लगता है वो मैरो। मज्जा तंतु किसको कहते हैं, स्नायु को, स्नायु मध्ये असत मज्जा, पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ मुझे तो चलो मैरो असणार आहे तो और मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है। स्नायु में कोई नहीं है, मैदा मैदा है ना, अरे मांस 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 यानी वो स्नायु, मांस यानी स्नायु, फैट चर्बी
चर्बी।
हाँ, मज्जा से शुक्र और शुक्र से प्रजा संतान उत्पन्न होती है। अब यहाँ कुछ काल का माप बता रहे, 15 नयन निमेशों की एक काष्ठा होती है। नयन निमेश यानी पल झपकना, आंखें बंद करके फिर खोलते हैं ना, वो निमेश कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला होती है, 20 कला का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त और कला के 10वें भाग कला प्रमाण एक अहोरात्र यानी दिन रात होता है। पंद्रह अहोरात्रों का एक पक्ष होता है, 2584 कला प्रमाण तथा 3/7 भागों से परिहीन 9 काष्ठा प्रमाण, अर्थात 2584 पूर्णांक इतने कला हुए,
600
और काष्ठा हो गए 8.4 सप्तमोश काष्ठा। काल तक रस रस स्वरूप से रहकर रुधिर रूप परिणत होता है, ये बताया ना, वह रुधिर भी उतने ही काल तक रुधिर रूप से रहकर मांस रूप से परिणत होता है। इसी प्रकार शेष धातुओं का भी परिणमन काल कहना चाहिए। इस तरह एक मास के द्वारा रस शुक्र रूप से परिणत होता है। इस प्रकार जिस कर्म के उदय से धातुओं का क्रम से परिणमन होता है वह अस्थिर नाम कर्म कहा गया है। इस अस्थिर नाम कर्म के अभाव में धातुओं के क्रमशः परिवर्तन का नियम न रहेगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर अनवस्था प्राप्त होती है। शंकाकार पूछते हैं, 7 धातुओं के कारणभूत पृथक पृथक कर्म कहना चाहिए, अरे कहना धातु अलग अलग है उसके कर्म भी अलग अलग कहो। समाधान, नहीं, क्योंकि उन 7 धातुओं की शरीर नाम कर्म से उत्पत्ति होती है। शंका, मनुष्य तीर्यंचों की सप्त धातु सही स्थिर अस्थिर है उनका, परंतु वो वैकृत शरीर के योग्य जो कुछ होगा उन, क्योंकि ध्रुवोदयी स्थिर अस्थिर दोनों है, नहीं उसमें नहीं होते हैं, सप्त धातु रहित शरीर पाया जाता है। यहाँ पूछ रहे हैं, सप्त धातुओं से रहित विग्रह गति में भी स्थिर और अस्थिर प्रकृतियों का उदय देखा जाता है, इसलिए इनका यहाँ पर व्यापार नहीं मानना चाहिए। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि संयोगी केवली भगवान में परघात प्रकृति के समान विग्रह गति में उन प्रकृतियों का अव्यक्त उदय रूप से अवस्थान रहता है। अव्यक्त उदय रूप बताया,
ये स्वरूप से उदय
नहीं होता, वो तो ध्रुवोदयी प्रकृति है वो,
पर स्वरूप से उदय नहीं होता, इससे संबंध है अव्यक्त उदय रूप,
यानी वो तो वहाँ वो कार्य नहीं हो रहा है ना, फिर भी उसका उदय बता दिया। सप्त धातु तो वहाँ कहाँ है, उज्ज्वल परमाणु ग्रहण ही नहीं किए, हाँ अपने अपने रूप।
ध्रुव दई 13 प्रकृति है कि 9,
अभी स्थिर अस्थिर हुआ, ध्रुव बंदी 9 है नाम कर्म। शुभ अशुभ की बात करेंगे, जिस कर्म के उदय से अंगोपांग नाम कर्मोदय जनित अंगों और उपांगों के शुभपना इन्हें रमणीयत्व होता है वह शुभ नाम कर्म है, और अंग और उपांगों के अशुभता का उत्पन्न करने वाला अशुभ नाम कर्म है। स्त्री और पुरुषों के वो स्त्री हुआ स्त्री स्त्री बराबर लिखना स्त्री और पुरुषों के सौभाग्य को उत्पन्न करने वाला शुभ का नाम कर्म है, और उन फिर से स्त्री हुआ स्त्री पुरुषों के ही दुर्भग भाव अर्थात दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाला दुर्भग नाम कर्म है। शंका अव्यक्त चेष्टा वाले इंद्रियादि जीव में सुभग भाव और दुर्भग भाव कैसे जाने जाते हैं? नहीं क्योंकि उनमें भी अव्यक्त रूप से विद्यमान उन भावों का आगम से अस्तित्व सिद्ध है। सुस्वर नाम मधुर ना देने शब्द का है। जिस कर्म के उदय से जीवों का मधुर स्वर होता है वह कर्म सुस्वर कहलाता है। अमधुर स्वर को दुस्वर कहते हैं। जैसे गधा ऊंट और सियाल आदि जीवों का स्वर दुस्वर होता है। जिस कर्म के उदय से जीव के बुरा स्वर उत्पन्न हो वह दुस्वर नाम कर्म कहलाता है। आदेयता ग्रहणीयता और बहुमान्यता यानी आदेय ग्रहणीय और बहुमान्य ये तीनों शब्द एक अर्थ वाले। जिस कर्म के उदय से जीव के आदेयता उत्पन्न होती है वह आदेय नाम कर्म कहलाता है। उससे अर्थात आदेयता से विपरीत भाव अनादरणीयता को उत्पन्न करने वाला अनादेय नाम कर्म है। यह ग्रहणीयता बहुमान्यता ने आदरणीयता अनादरणीयता ऐसे दो अर्थ किए उन्होंने। यश नाम गुण का है उसके सद्भावन को यानी प्रकटीकरण को कीर्ति कहते हैं। जिस कर्म के उदय से विद्यमान या अविद्यमान गुणों का उद्भावन लोगों के द्वारा किया जाता है यानी कभी कभी उसमें वो गुण है और उसका वो तो यश फैलता है कीर्ति होती है, कभी कभी नहीं है फिर भी फैलती है कहना था। उस कर्म की यशस कीर्ति यह संज्ञा है। जिस कर्म के उदय से विद्यमान या अविद्यमान अवगुणों का उद्भावन लोग द्वारा किया जाता है उस कर्म की अयशस कीर्ति यह संज्ञा है। नियत मान को निर्माण कहते हैं। वह दो प्रकार का है प्रमाण निर्माण और संस्थान निर्माण। एक्चुअली स्थान निर्माण कहते हैं उसको। प्रमाण यानी जैसे आंखें दो ही आंखें हैं और उसका स्थान यानी उसका निश्चित स्थान पर है। मनुष्य की आंखें कहाँ पर होती है और कोई वो डेढ़ को होगा ना फ्रॉग उसकी कहाँ होगी आंखें। हर एक की जो जाति है उसकी वो उनके अवयवों के विशिष्ट स्थान नक्की होता है। जिस कर्म के उदय से जीवों के दोनों ही प्रकार के निर्माण होते हैं उस कर्म की निर्माण यह संज्ञा है यानी प्रमाण निर्माण और संस्था निर्माण। यदि प्रमाण निर्माण नाम कर्म न हो तो जंघा बाहु सिर और नासिका आदि का विस्तार और आयाम लोक के अंत तक फैलने वाला हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि उस प्रकार से पाया नहीं जाता। इसलिए काल को और जाति को आश्रय करके जीवों के प्रमाण को निर्माण करने वाला प्रमाण निर्माण नाम कर्म है। यदि संस्था निर्माण नाम कर्म न हो अंग उपांग और प्रत्यंग संकर और व्यतिकर स्वरूप हो जाएंगे। किंतु ऐसा ही नहीं क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। इसलिए कान आंख नाक आदि अंगों का अपनी जाति के अनुरूप अपने अपने स्थान पर जो नियामक कर्म है वह संस्थान निर्माण नाम कर्म कहलाता है। ये विशेषाक पढ़ लेते हैं। इतना पहले जो संस्था निर्माण नाम कर्म के अभाव में अंग उपांगों के संकर व्यतिकर स्वरूप होने का वर्णन किया है, उसका अभिप्राय यह है कि यदि संस्थान निर्माण नाम कर्म न माना जाए तो बाधक या नियामक कारण के अभाव में, यानी अगर वो उसको कर्म को नहीं ऐसा मानेंगे तो किसी एक अंग के स्थान पर सभी अंगों के उत्पन्न होने से संकर दोष आ सकता है। यानी कान अपने जगह पर है, नाखे अंतने नाक में, तो सभी एक ही जगह में सारे उत्पन्न हो जाए, यहीं पर नाक कान नाक सब यहाँ पर हो जाएंगे किसी अंग पर, ऐसा नहीं हो सकता। तथा नियामक कारण के न रहने से नाक द्वारा आंख का कार्य और आंख द्वारा कान का कार्य भी होने लगेगा। इसलिए इंद्रियों का परस्पर विषय गमन होने से व्यतिकर दोष भी प्राप्त होगा। अतएव दोनों दोषों के परिहार के लिए संस्था निर्माण नाम कर्म का मानना आवश्यक है। एक लाइन है, जिस कर्म के उदय से जीव की त्रिलोक में पूजा होती है वह तीर्थंकर नाम कर्म है। अब जो हमने देखे उसके अभी भेद के भेद और बाद में पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते तुझे लोपालो सोवानी मस्तकनम सदा नित होनु। अश्विन भाई
नमो ओरियंताणम नमो।